نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہم ایک درخشاں ستارے سے انٹروڈیوسڈ ہوں گے، وہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. اگر آپ ان کی کہانی اور ان کی ذات اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو ایک لفظ کہہ دیجئے کہ تلاش حق. یہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے حق کو تلاش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مطابق کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو جنت تلاش کرتی ہے. جس کو جنت تلاش کرے یا جو جنت کو تلاش کرے، دونوں کو ایک راستے سے ضرور گزرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے کہ حق کیا ہے، اس کو جاننا، اس کو پرکھنا اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل کرنا. تو آئیے پڑھتے ہیں سلمان فارسی کے حالات زندگی اور اس کے بارے میں عمل کی بات بھی لیں گے. حقیقت یہ کہ ان لوگوں کی باتیں کرتے ہوئے دل نہیں بھرتا. ان کے تذکرے، ان کی باتیں، ان کے حالات، یہ کیوں اتنے دلوں پہ اثر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حق میں سے تھے. تو آئیے ان کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کا فرمان ہی دیکھیں گے جو ان کے لیے ایک خراج تحسین، گولڈ ماڈل اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے اتنی بڑی خوشخبری سنائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، نام سے ہی لگ رہا ہے کہ یورپ نہیں تھے، فارس سے آئے تھے. فارس، فارسی بولنے والی جگہ، تو فارسی، فارس سے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کن کن مراحل سے گزار کر حق تک پہنچایا اور پھر حق کے لیے جم گئے اور ٹھک گئے. یہ ہر اس بندے کی کہانی ہے جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں زندہ ہوں، کیوں صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور زندگی تمام ہوتی ہے. حقیقت یہ کہ مقصد حیات کو جانے بغیر جینا بالکل ایک لاسٹ پرسن کا جینا ہے، ایک ایسا شخص کہ جس کو پتہ ہی نہیں میں ہوں کون، کہاں سے آیا. اور یہ بات انسان کو جتنا پریشان کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، اس کا اتنا شاید کوئی اور نہ کرتا ہو. ایسا شخص ڈپریس بھی ہوگا، پریشان بھی ہوگا، دکھی بھی ہوگا. آپ یہاں آئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں میں آئی کیوں، تو آپ پریشان ہوں گے، ایک دم دماغ میں الجھن آئے گی، کچن میں جائیں پتہ نہیں کیوں آئی تھی، سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہوا، بازار گئے پتہ نہیں کیا لینے آئی تھی. آپ ذرا سی ان مثالوں سے کیفیت محسوس کریے، اس کا جواب اضطراب ہے، بے چینیاں ہیں. بالکل وہ لوگ جو زندگی کا مقصد جانے بغیر اس دنیا میں جی رہے ہیں، اینڈ ایٹ ڈرنک بی میری کے اوپر عمل کرتے ہوئے، وہ بھی پریشان ہی ہیں. تو ان کو اللہ نے کیسے دور سے چنا. دوسری بات ان کے بارے میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. ان کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ جملہ جب میں نے پڑھا، اور میں نے پہلے بھی پڑھایا اور اب پھر پڑھا رہی ہوں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی کتنے مزاج شناس تھے. دیکھیں نا کہ یہ قریشی تو تھے ہی نہیں، مکی بھی نہیں تھے، عرب بھی نہیں تھے، پردیس سے آئے ہوئے تھے نا. ایسے شخص کے لیے دنیا کے سب سے بڑے انسان، سب سے معتبر انسان کا یہ کہنا کہ سلمان تم تو میرے گھر والوں میں سے ہو، تم تو میرے اہل بیت ہو، کیا سلمان کا دل نہ ٹوٹا ہوگا؟ دل کیا ہوگا، اللہ کے نبی کے گلے لگ جاؤں. یاد رکھیے کہ تنہائی انسان کو مار دیتی ہے. دیس سے پردیس میں کوئی انسان بیٹھے وہ مرجھا جاتا ہے. آپ خود بھی دیکھیں گے اپنوں اور غیروں کا فرق، کتنا معروف فرق ہے ہمارے کلچر میں. ہم تو اپنوں میں شادی کرتے، ہم تو اب غیروں میں نہیں کرتے، اور یہ اور وہ. وجہ کیا ہے کہ اپنائیت ہوتی ہے. آج بھی اگر آپ مکہ میں جائیں نا، تو یقین کریں کہ عربوں کا اور ہم اجمیوں کا فرق محسوس ہوتا ہے. یہ اپنے ہیں، یہ غیر ہیں. تو غیروں کو اپنا بنانے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. انسان اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے لوگوں میں جینا چاہتا ہے. اکثر جب ہم اپنے وطن جاتے ہیں، پیچھے کوئی بھی جس کا جو وطن ہے، تو وہ ضرور ایک بار تو سوچتا ہوگا کہ کمی کیا تھی ادھر. بعض دفعہ دوسری دنیا میں بہت ہی زیادہ نعمتوں میں، آسائشوں میں پلنے والے لوگ جب گرمی سردی سہتے ہوئے اور پھر हाइजीनिक प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी अपने मुल्कों में जाते हैं, तो कभी उस वक़्त सवाल तो करें कि क्या चीज़ आपको इधर ले आई। ये वो चीज़ है जिसको तन्हाई कहते हैं। अपनों की मोहब्बत, अपनों में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और याद रखिए कि हमारे बड़े कहते थे कि पौधा भी तन्हा मुरझा जाता है। ऐसी एक बात आ रही है हज़रत सलमान का सोचकर, तो आपसे बात करती ही जा रही हूँ, कि एक शख्स था, कहने लगा कि मेरी बीवी ने कुछ दिन पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवाए और एक छोटा सा बाग बना लिया। कुछ दिन के बाद मैं छत पर गया तो मैं हैरान हो गया कि वहाँ गमलों में फूल भी खिल गए, नींबू के पौधे पे दो तीन नींबू भी आ गए, दो चार हरी मिर्चें भी आ गईं। मैंने देखा कि पिछले हफ्ते जो बांस का पौधा था गमले में लगाया था, तो मेरी बीवी उसको उठा के ना तो एक दूसरे गमले के पास करने लग गई। मैंने उससे कहा कि तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? अब ज़रा जुमला सुनिएगा। बीवी ने कहा कि यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसका कर इस पौधे के पास कर देते हैं। कहने लगा, मैं हंसा और मैंने कहा, अरे भाई पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसका कर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? तो बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है, इसे दूसरे पौधों के पास कर दूंगी तो ये लहलहा उठेगा, क्योंकि पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन अगर किसी और पौधे का इनको साथ मिल जाए तो जी उठते हैं। कहता कि ये बात मैंने अपनी बीवी की सुनी तो मेरे दिल में क्या कुछ आया कि हमारी माँ की मौत के बाद हमारे वालिद एक ही रात में बूढ़े हो गए, अगरचे माँ के बाद कई साल जिंदा रहे लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह। माँ के रहते हुए जिस वालिद को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश से हो गए। तो मुझे बीवी की बात पे यकीन आ गया कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। और फिर अपना तजुर्बा कहते हैं कि मैं बचपन में एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत सी मछली लाया तो उसे शीशे के जार में डाल दिया, तो मछली सारा दिन गुम सुम बैठी रहती। मैंने उसके लिए खाना भी डाला लेकिन उसने नहीं खाया। एक आध दिन के बाद वो मछली पानी की सतह पे मुर्दा थी। फिर मुझे अफसोस हुआ कि अगर मैं कुछ और मछलियाँ भी इसमें डाल देता तो ये कभी ना मरती। तो बात क्या है, अल्लाह के नबी का ये जुमला कि सलमान हमारे अहले बैत में से, ये किसी की तन्हाई को बांटने वाला जुमला। अगर आप अंदर देखें ना, हर एक इंसान अपने अंदर से किसी को चाह रहा होता है। कोई अकेला हो उसको साथ दीजिए, उसको मुरझाने से बचाएं, और अगर आप अकेले हैं ना तो वल्ला ही किसी का साथ ले लीजिए, खुद को मुरझाने से रोकें। बस वह लोग तन्हाई पसंद होने लगते हैं, नहीं साथ रहिए, आप अकेले नहीं हैं। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा कि जमात से जुड़े रहो। वो जमात से मतलब हमारी जमात इस्लामी या जमात दावा या नूरुल कुरान नहीं था। तन्हा ना रहो, अकेले में बंदा घुट जाता है, मर जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। और इंसान आए इस अंदर से सूख जाता है तो इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी को ये पता था कि सलमान बड़े धक्के खा के आए हैं, अभी हम पढ़ते हैं उनके धक्के जिसको तलाश हक कहेंगे, लेकिन असल में ये कभी कभी धक्के हमें स्टार्ट करने के लिए होते हैं। जैसे कभी गाड़ी की बैटरी ना चले ना तो लोग उसको धक्का देते हैं। पाकिस्तान में तो ये मंजर हमने बहुत दफ़ा देखा। आज की गाड़ियों का मुझे नहीं पता धक्का मांगती हैं या फ़ोन मांगती हैं, लेकिन हम जब छोटे थे और हमारे मर्द कभी कभी गाड़ी को धक्का लगाते थे और कहते थे बैटरी डाउन हो रही है इसकी, तो बैटरियों को चार्ज करने के लिए ज़िंदगी में धक्कों की ज़रूरत होती है। यही है सलमान फारसी की ज़िंदगी पे मेरे चंद कमेंट्स। आइए अब इसको बुक में से पढ़ते हैं। किताब का सफ़ा नंबर अगर आप देखना चाहें तो 135 135 हयात सहाबा के दरख्शां पहलू। ये एक ऐसे अजीम शख्स की दास्तान है जो हकीकी मंजिल को हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करता हुआ और अल्लाह सुबहान तआला की तलाश में मुसलसल गर्दिश करता रहा हो। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु की कहानी हम आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं, जिसको आप कहते हैं ना मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। यकीनन जिस तरह वो आप अपनी आप बीती उम्दा सलूक में बयान कर सकते हैं, कोई दूसरा तो ये अंदाज़ अपना भी नहीं सकता। बिला शुबा इस सिलसिले में जिस तरह इनके अपने एहसास नाजुक और अंदाज बयान सदाकत व हकीकत पर मबनी हो सकता है, कोई भी दूसरा ये हक अदा नहीं कर सकता। तो सुनिए, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अस्फहान के इलाके का एक फारसी उल नस्ल नौजवान था। اپنے تعارف کے اعتبار سے یہ فارس سے تھے. جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جی نام سے مشہور تھی. میرا باپ اس بستی کا سردار تھا اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روب و دبدبے کا مالک تھا. پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا, یعنی اپنے باپ کے لاڈلے تھے. یہ نہیں ہے کہ باپ کی آنکھوں کے تارے نہیں تھے یا ان کو اپنے باپ کا پیار نہیں ملا, کیونکہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جن بچوں کو گھر سے پیار نہیں ملتا وہ اس طرح بگڑ جاتے ہیں اور یہ اور وہ کچھ اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں. ایسا نہیں تھا, مطلب اپنے باپ کے لاڈلے تھے. یہاں سے بھی آپ دیکھیے گا کہ بعض دفعہ زندگی میں وہ لوگ جو بڑے لاڈ اور ناز و نیم میں پلے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی دھکے آتے ہیں, جھٹکے آ جاتے ہیں. اکثر بچیاں کہتی ہیں ہم اپنے گھر میں بہت لاڈلے تھے اور ہمیں یہ تھا اور باپ کے پیارے, ماں کے لاڈلے, یہ وہ, لیکن وقت اور حالات کے مطابق کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو اسی میں سے یہ ایک لاڈلا بچہ تھا. جوں جوں میری عمر بڑھتی گئی اس کے مہر و محبت میں اضافہ ہوتا گیا. مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح دوشیزاؤں کو گھروں میں پابند کر دیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ عمل کی باتیں لیتے جائیں تو پہلے دور میں دوشیزائیں گھروں میں پابند رہتی تھیں. آج کی دوشیزائیں کدھر ہیں؟ کاؤنٹرز پہ کھڑی ہیں, آفیسز میں بیٹھی ہیں, الا ماشاء اللہ. آپ یاد رکھیے کہ عورت بڑی قیمتی چیز ہے, یہ واقعی چھپانے کے قابل ہے. یہ گھر میں بڑی محبت اور ہینڈل وتھ کیئر کے ساتھ رکھنے والی چیز ہے. عورت جب معاشرے کے سرد اور سخت ہاتھوں میں دی جاتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی ہے. کبھی بھی آپ کرسٹل کو ایسے ہی نہیں موو کرتا دیکھیں گے, اس کے ارد گرد 10 قسم کی پیکنگ شیٹس اور نہ جانے کیا کیا لگائیں گے. اور چار دیواری قید نہیں ہے, سیکیورٹی ہے. فرق صرف یہ کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں. اگر مجرم ہیں تو آپ کو قید لگے گی, اور اگر آپ خود کو قیمتی سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ اپنے لیے سیکیورٹی دکھے گی. میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. دیکھیے محبت کا قید خانہ کیا ہوتا ہے آپ کو بتایا, آج سے اپنے گھر کا نام رکھ لیں. بچے آپ کو کبھی بھی کسی بات میں کچھ کہے نا, خاص طور پہ اس ماحول میں جب ساری دنیا باہر نکلنا چاہتی ہے تو بچیاں کبھی پوچھ سکتی ہیں آپ ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے, آپ ہم پہ اتنی پابندیاں کیوں ہیں, تو آپ کہہ دیں کہ یہ گھر آپ کی محبت کا قید خانہ ہے. جو محبت گھر اور گھر والوں سے مل سکتی ہے ساری دنیا آپ کو دے اس کا برابر نہیں ہے. بس جب آپ ساری دنیا ہماری تعریفیں کرے گی, محبتیں بانٹے گی, پھول دے گی, لیکن آپ ترس رہے ہوتے ہیں اپنوں کو کہ میرا اپنا بھی ہے کوئی, کہ میرے اپنے بھی اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یعنی کہہ لیجئے کہ اللہ نے ان کو بچپن سے محبت کی دولت دی. تعلیم کیا ملی؟ مجوسیت. مجوسیت کیا ہوتے ہیں؟ مجسا سے عبرانی لفظ ہے, آگ کی پوجا. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, الہ کون ہے؟ اللہ. یہ آگ کو الہ کہتے ہیں, اور اس مذہب کی شان یہ ہے کہ آگ بجھنے نہیں دینی ورنہ ان کا خدا مر گیا. تو بچپن سے دیکھیے کس نیگیٹو ماحول میں پلے, اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا. بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کرتے تھے. نوٹ کریں, اللہ کون ہے؟ جو ہماری حفاظت کرتا ہے, اور یہ اپنے خدا کی حفاظت کرتا ہے. کفر یا شرک اور اسلام میں یہی فرق ہے. ہمیں ہر چیز میں اللہ کا سہارا ہے, اللہ ہمارے کام بناتا ہے, اور غیر اسلام میں لوگ اپنے خداؤں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی. میں اسے دن رات ایک لہجے کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا. دیکھیں کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے ان کو اپنے خدا کی جان بچانے کے لیے. یہاں بات بھول نہ جائے تبھی کہہ دوں, آپ نے کبھی کہیں یہ سمبل دیکھا, آگ کا لاؤ جلا کر اس کو کھڑا دیکھو, اولمپکس. یہ اسی کلچر سے آیا ہوا نام ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں اور ان کے سمبلز کو دیکھتے بھی نہیں, غور بھی نہیں کرتے, لیکن یہ انہی کی یادیں ہیں. پیچھے نہ کہیں رابطہ ضرور ہوگا ان چیزوں سے. کہتے ہیں کہ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا. سالانہ وافر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا. روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا. एक दिन वो किसी ज़रूरी काम में मशगूल हो गए और मुझे हुक्म दिया, बेटा मैं आज खेतों में नहीं जा सकूंगा, मेरी जगह आप जाएं और खेतों की निगरानी करें। मैं घर से तो अपनी जागीर की निगरानी करने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में एक गिरजा, अगर इसको लग करके पढ़े तो क्या बनता है, गिरजा, गिरजे के पास से गुजरा जिसमें ईसाई पूजा पाठ में मसरूफ थे। मुझे इनका तर्ज इबादत बहुत पसंद आया। यहाँ ज़रा सा रुकिए और बात कीजिए, अल्लाह ताला कैसे बंदे को हिदायत की तरफ लाता है। देखिए, मजूसियों से उस दौर में देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो ईसाइत मज़हब बहुत अच्छा था, अल्लाह का तसव्वुर तो था ना। तो अल्लाह ने पहले इनको गिरजे में भेजा और लोगों को इबादत करते देखा। आज भी आप रिवर्ट्स को सुने ना कभी, या देखें या पढ़ें उनकी बातें, तो यही कहते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे मज़ाहिब ने इबादत को तो ख़त्म ही कर दिया ना। तो जब बंदे के अंदर एक तलब है, याद रखिए कि जैसे भूख लगती है और खाना खाते हैं, इसी तरह हमारे अंदर इबादत की भी तड़प है, किसी को पूजने का भी शौक है। वल्लज़ी नामन अशद्द हुब्बल लिल्लाह, ईमान वाला तो ये तड़प और ये अर्ज अल्लाह से मोहब्बत करके पूरी कर लेता है, और इसको मैंने इस दफ़ा दिल से महसूस किया। हमेशा ही मक्का से जब वापस इंसान आता है तो कुछ दिल को हाथ होता है, इस दफ़ा मैंने मक्का का नाम मैका रख दिया है, क्योंकि वल्ला ही वो नूरुल कुरान वालों का मैका है। जितने लोग मुझे इन तीन उम्रों के सफ़र में मिले, जो अब 2-2.5 माह में पिछले 3 दफ़ा हुए, तो कोई इंडिया से आ रहा है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया से है, तो कोई अमेरिका से है, तो एक बच्ची ने मतलब रुला ही दिया कि पता नहीं हमने कभी नॉर्वे तो आना भी नहीं था, और पाकिस्तान तो तसव्वुर ही नहीं, और आप हमारे मुल्क नहीं आती, तो ये मौका था जिसको मैं जाने नहीं देना चाहती थी। और किस तरह वो ढूंढती ढांढती आती थी बच्चियाँ, और ज़ाहिर है कि वहाँ टाइम रश इस धाम, फिर घर वाले भी साथ, तो हमने ऑलमोस्ट तकरीबन जितने स्टेबल डेज थे हर दिन वहाँ क्लास की है। वो जगह देख कर ऐसे ही लगता था कि ये मक्का, हर एक को मिलना, और मोहब्बत और शौक। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि अल्लाह सुबहान तआला बंदे के अंदर तड़प रखता है। उसी में बल्कि एक आखिरी लेक्चर था उसमें हमने इस मौजू पे बात भी की थी कि खाने से जैसे ताकत मिलती है ना, इसी तरह इबादत से भी ताकत मिलती है। हम कहते हैं ना, बीमार है तो नमाज भी ना पढ़ो, आप बीमार को के उठो नफिल पढ़ो, देखिए उसको कितनी ताकत मिलती है। ये हमने सफ़र में आजमाया, एक ब्रदर 2-3 दिन से ज़रा सिक थे, हॉस्पिटलाइज तक हुए, जब वापस आ रहे थे तो लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप उम्रे का अहराम ना बांधे। मैंने सिर्फ एक जुमले में कहा कि कोई इनको ऐसे उल्टे सीधे मशवरे ना दे। 2-2.5-3 दिन से वो वोमिटिंग पे और डायरिया और सिकनेस पे थे। यकीन करें उनकी बीवी की गवाही है जो हमारी स्टूडेंट है कि जू ही इन्होंने अहराम पहना इनकी तबीयत संभलनी शुरू हो गई, और माशाल्लाह उम्रे के बाद वो बिल्कुल वैसे भाग दौड़ रहे थे जैसे पहले थे, हालांकि पिछले 3 दिन वो बहुत सिक रहे। तो इबादत से ताकत मिलती है। मत सोचा करें कि हम बीमार हो गए तो कुछ ना करें, ये तो अल्लाह ने रुख्सतें दी है ना, खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं तो लेट के, लेकिन ताकत इन चीज़ों से मिलती है। तो इनको अल्लाह ने सबसे पहले ईसाइत से रोशनास कराया। कहते हैं कि मुझे इन दिनों ईसाइत या दीगर अदियान, दीन की जमा, दीगर अदियान के मतलब कुछ इल्म नहीं था, इसलिए कि मेरा वालिद मुझे घर से किसी वक्त बाहर निकलने ही ना देता था। इस रोज़ जब मैंने गिरजे के अंदर ईसाइयों की इज्तमाही आवाज़ें सुनी, बेख्तियार इसके अंदर चला गया। जब मैंने गौर से इन्हें देखा कि वो सब इबादत में मसरूफ़ हैं, तो मुझे इनकी इबादत का अंदाज़ बहुत पसंद आया और मैं इनके दीन की तरफ राग़िब हो गया। मैंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, ये दीन तो इससे कहीं बेहतर है जो हमने इख्तियार कर रखा है बखुदा। मैं ग़ुरूब आफ्ताब तक वहीं रहा और इस दिन खेती बाड़ी की निगरानी के लिए ना गया। मैंने अहले कनीसा, कनीसा क्या चर्च, आप क्या कहते हैं शिरके, लफ्ज़ ही शिरके में शिरका है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये लफ्ज़ सुना नॉर्वेजियन में, मैं हैरान रह गई। शिरका कहते हैं, अगर आप इसको अरबी में कह लें तो जो मर्ज़ी समझ लें। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, अहले कनीसा। मैंने अहले कनीसा से दरियाफ्त किया इस दीन का मरकज़ कहाँ है। उन्होंने मुझे बताया मुल्क शाम यानी सीरिया। जब रात हुई तो मैं अपने घर वापस लौट आया। बाप ने मुझसे पूछा, आज दिन भर आपने कौन सा काम सर अंजाम दिया। मैंने अर्ज की, अब्बा जान, आज खेतों की तरफ जाते हुए मेरा कनीसे के पास से गुजर हुआ, मैंने देखा कि कुछ लोग अंदर इबादत में मसरूफ हैं, मुझे इनकी इबादत का अंदाज बहुत पसंद आया। शाम तक मैं इन्हीं के पास बैठा रहा। मेरा बाप ये बातें सुनकर घबरा गया और इसने अपना दिल पकड़कर कहा, बेटा इस दीन में कोई खैर और भलाई नहीं, तेरे अबाउजदाद का दीन इससे कई बेहतर है। मैंने कहा, अब्बा जान हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम इन लोगों का दीन हमारे दीन से बहुत बेहतर है। मेरा बाप मेरी जानिब से ये जवाब सुनकर बहुत परेशान हुआ। इसे अंदेशा लाहक हो गया कि कहीं मैं अपने आबाई दीन से मुनहरिफ ना हो जाऊं, यानी उसको छोड़ ना दूं। इसने मुझे घर में कैद कर दिया और मेरे पाँव में जंजीर डाल दी। अमल की बातें देखिएगा। पहली बात है कि अल्लाह ने जिसको हक दिखाना होता है अल्लाह दिखा देता है। दूसरी बात देखिए कि वो लोग जो अपने बच्चों को बहुत सिक्योर्ड रखते हैं, अपने अफकार के अलावा किसी और चीज़ की झलक भी नहीं डालने देते, अगर उन बच्चों में खैर होगी अल्लाह कोई बहाना बनाकर उनको हक के पास ले आएगा। एक और चीज़ जो बहुत ही अच्छी इसमें समझ आती है कि फितरत जब सलीम रहे, यानी पैदाइश के वक्त इंसान के अंदर जो सच्चाई होती है अगर वो सलामत रहे तो इंसान हक की तरफ अट्रैक्ट करता है, सच उसको महसूस होता है। जैसे बच्चा लपकता है ना मीठी चीज़ को देखकर, कैंडी को, टॉफ़ी को, कोई सिखाता थोड़ी है उसको। इसी तरह हक को पाने की तलब हर इंसान के अपने दिल में होती है। फिर दूसरी बात देखिए कि इनका ये जुमला बड़ा काबिले गौर है कि खुदा की कसम ये दीन तो इससे कहीं बेहतर है जो हमने इख्तियार कर रखा है। इस सारे पैराग्राफ में ये देखिएगा कि बाप दादा के नाम से हम जो सुन रहे होते हैं ना, हमें सच लगता है। ये तब तक हो सकता है जब तक बंदा बालिग ना हो, बलूगत से पहले, इसीलिए हिसाब माफ है। क्योंकि सच्ची बात है, आप जो देखते हैं आपको वो सही लगता है। मिर्चें खाते हैं तो आपको मिर्चें अच्छी लगने लग जाती हैं, दीन की बातें तो दूसरी तरफ है। लेकिन आपको जब महसूस हो ना कि जो तरीका मैंने बचपन से इख्तियार किया हुआ है उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, तो ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए। इस पे बल्कि मुझे एक या दो और लोगों की भी बात याद आ गई। वो कहते थे कि हमारे वालिद किसी भी फिरके के बड़े पेशवा थे, तो घर में जिस तरह आप कहते हैं ना कि सख्ती के साथ कहा करते थे, फलां फलां और फलां को कभी ना सुनना, फलां की किताबें कभी ना पढ़ना, औरों की पढ़ो। ये एक ब्रदर ने हमें खुद सामने बैठकर सुनाया, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कि उनके बाप कैसे एक फिक्के किसी भी एक सोच के हामिल थे और इनको रोकते थे कि इस मसलक के बारे में कुछ ना जानना। कहते हैं यही चीज़ मेरी हिदायत का जरिया बनी, हदीस की किताब नहीं कभी खोलनी, ये वो, लेकिन अल्लाह ने बाद में दिल बदल दिया। फिर आप देखिए कि इसमें एक और जुमला नोट करें, इस दीन का मरकज कहाँ है। ये भी इंसान की फितरत है, जब उसको कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है ना तो वो उसका रिसोर्स मांगता है, ताकि मोहर ले सकूँ, डायरेक्ट ले सकूँ। जैसे आज मुसलमान मक्का मदीना क्या करने जाते हैं, उन गलियों से गुजर कर वो यादें ताज़ा करते हैं ना कि इधर कुरान उतरता था, इधर अल्लाह के नबी बैठते थे, इधर इधर इधर। और अपने सफ़र में सलमान फारसी के नाम से भी एक जगह देखी, इनका बाग है, तो वो मक्का में जब डिफरेंट ऐसी विजिट्स करते हैं तो उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री वो फिर बताते हैं। फिर इसके बाद एक और चीज़ देखिए, चूँकि सच्चे थे और भोले थे तो आके बाप को सारी कहानी सुना दी। अगर उनको शक होता कि मेरे बाप ने इस पर पाबंदी लगानी तो कभी ना बताते, तो बच्चे अपनी फितरत के एतबार से सच ही बोलते हैं। फिर इसके बाद अगली चीज़ देखिए कि बाप ने इनको मना किया, कैद किया और पाँव में जंजीरें डाल दी। ज़रा से इस पर रुकिए, इनके बारे में शुरू के पैराग्राफ में क्या था, बाप को इनसे ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं था, तो अब अपने प्यारे के पाँव में जंजीरें डाल दी। ये है तासुब, जिसने हक का रास्ता लिया उसके पाँव में जंजीरें पड़ी, ये तो आम होगा। अब ज़रा इनका सिनेरियो ज़हन में रखिए कि घर में पहले भी थे, वो सिक्योरिटी थी, घर इनके लिए सिक्योर प्लेस थी, अब वो कैद खाना बन गया। बात समझ गए, यानी अब प्रिजन बन गया घर। आगे चलते हैं थोड़ा सा। कहते हैं एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने गिरजे में यह पैगाम भेजा, जब कोई मुल्क शाम को जाने वाला हो। अच्छा, अब ये समझ गए थे कि उन्होंने उस क्रिश्चियनिटी को शाम से क्यों जोड़ा, बैतुल मक़दस, क्योंकि यहूद और नसारा दोनों का बैकग्राउंड अगर देखें तो वो मुल्क शाम सीरिया से जोड़ते हैं, जैसे आज हम मुसलमानों का मक्का से जोड़ता है। तो इन्होंने पैगाम भेजा कि जब कोई मुल्क शाम को जाने वाला काफ़िला आपके यहाँ से गुजरे तो मुझे ज़रूर इत्तला कर दें। थोड़े दिनों के बाद एक काफ़िला वहाँ पहुँचा जो शाम जा रहा था। अहले कनीसा ने मुझे इत्तला कर दी, मैंने पूरे ज़ोर से झटका दिया, जंजीर टूट कर दूर जा गिरी। इनके नाम पे मुझे याद आ गया, बच्चों की स्टोरीज हैं, दारुसलाम की छपी हुई, तो बुक का भी यही नाम है, और जंजीर टूट गई। खैर, मैं चुपके से बाहर निकला और काफ़िले के साथ हो लिया। चंद दिनों बाद हम शाम पहुंच गए। वहां मैंने दरियाफ्त किया, इस मुल्क में सबसे आला मजहबी शख्सियत कौन है? लोगों ने मुझे बताया, चर्च का निगरान आला यानी पॉप। मैं इसकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, मुझे ईसाइत में दिलचस्पी है। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं आपके पास रहूं, ईसाई मज़हब की तालीम हासिल करूं और आपकी रहनुमाई में इबादत करूं। मेरी मारूजात, मारूजात यानी अर्जी या मेरी बात सुनकर इसने मुझे अपने पास रहने की इजाज़त दी। मैंने जी भर कर इसकी खिदमत की, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद मुझे मालूम हो गया कि यह आदमी अच्छा नहीं है। यह अपने पैरोकारों को सदका व खैरात करने का हुक्म देता है, और जब वो अपने मालो मता लेकर इसकी खिदमत में हाजिर होते ताकि इसके ज़रिए सदका व खैरात किया जाए, तो यह सब माल खुद हड़प कर जाता, फ़ुकराओ मसाकीन को इसमें से कुछ न देता। इस तरह इसने 7 मटके सोने और चांदी से भर लिए। जब मैंने इसकी ये हरकत देखी तो मुझे वो शख्स बहुत बुरा लगा, लेकिन चंद ही दिनों के बाद मौत ने इसे आ लिया। ईसाई पैरोकार जब इसे दफन करने लगे तो मैंने इनसे कहा, तुम्हारा मजहबी सरदार कोई अच्छा आदमी नहीं था, ये तुम्हें तो सदका व खैरात का हुक्म देता, और जब इसके तरगीब दिलाने पर तुम अपना माल इसके पास जमा कराते ताकि ये अपने हाथ से गुरबाओ मसाकीन में तकसीम कर दे, तो ये सब माल खुद हड़प कर जाता, इसमें से एक पाई भी किसी मिसकीन को ना देता। उन्होंने मुझसे कहा, आपके पास क्या दलील है? मैंने कहा, तुम्हें इसका ख़जाना बता देता हूँ। उन्होंने कहा, जी बताइए। मैंने इन्हें वो खुफिया जगह बताई जहाँ इसने माल दबा रखा था। जब उन्होंने सोने और चांदी के भरे हुए 7 मटके देखे तो उंगलियाँ दांतों में दबा गए, यानी अंगुश्त भी दंदा रह गए। ये मटके वहाँ से निकाल लिए और सब ने फैसला किया कि इसे दफन ना किया जाए, बल्कि सूली पर लटकाकर इस पर पत्थर बरसाए जाएं, और इसके साथ बिल आखिर यही सलूक किया गया। यहाँ तक बात करें, कितनी इबरत की बात है। पहली बात देखिए कि इसको क्या चीज़ क्रिश्चियनिटी की तरफ लाई। बहुत ही अहम बात है, अगर मैं आपको समझा पाई तो मुझे लगता है कि आज हमारे बैठने का मकसद हासिल हो गया। उनके तरीक़े इबादत, रिचुअल्स, मोड्स ऑफ दी वर्शिप, राइट? ये कुछ और पहले करता था, अब ये कर रहा था, लेकिन इसको क्रिश्चियनिटी से पुट ऑफ किस चीज़ ने किया? शख्सियत ने। लिख लें, या आप कर मेरे लिए है, औरों की बात नहीं है ये। याद रखिए कि लोग आपके किरदार को देखकर या तो जमेंगे या चले जाएंगे। गलत फहमी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन मुस्तकिल कोई अपना आप छुपा नहीं सकता। तो हमेशा याद रखिए, अब हम दीन से मुतारिफ हैं तो दीन हमसे मुतारिफ हैं। एक दुआ किया करें कि अल्लाह मेरी ज़ात को लोगों के दीन में आने का भी ज़रिया बना, और मेरी ज़ात की कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसको देखकर लोग दीन से निकलें। हालांकि लोगों को देख के निकलना नहीं चाहिए, लेकिन इसने भी तो देखिए ईसाइत नहीं छोड़ी, लेकिन उस शख्स की बात खोली। फिर दूसरी इस सफ़र में एक और चीज़, ये जब हमने हिस्सा पढ़ा, इसमें देखिए कि हक को पाने की तड़प कितनी थी कि जंजीर टूट कर दूर जा गिरी। आमतौर पर जो शख्स कैद किया जाता है वो अपने जंजीरें नहीं तोड़ता, लेकिन हक में ताकत है। वो कहते हैं ना कि जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। दूसरी बात, आप देखिए कि इस सारे पैराग्राफ से मुझे सूरह तौबा की वायद याद आती है कि बेशक इनके कितने ही रुहबान और रिब्बी लोगों का माल खाते हैं। ये दोनों अहले किताब के लिए कुरान ने इस्तेमाल किया। तो हर वो बंदा, हर वो बंदी जो किसी दीनी काम और ख़ास तौर पर माल, रुपया, पैसा, डोनेशन, गोल्ड, सोना, चांदी से मुतल्लिक काम करे, करना तो है। कई लोग कहते हैं हम नहीं फिर करते, नहीं फरिश्ते तो नहीं करेंगे, करना तो है। नंबर एक, एक्स्ट्रा केयरफुल, और नंबर टू, एक्स्ट्रा तकवा, क्योंकि माल हाथ में आ जाए तो ईमान चला जाता है, और ये जो चीज़ है ये फिर इंसान को दुनिया में भी रुसवा करती है। ये आखिरी हिस्सा जो पढ़े ना कि उसको दुनिया में पत्थर मारेंगे, ये अल्लाह का वादा है। और देखिए, उसकी ज़िंदगी में उसके मटके सोने चांदी के नहीं दिखे, मरने के बाद दिखे। तो दीन के साथ सच्चाई और मुखलिस के आपका अपना भी जो साथी है ना, वो भी निकाल दें। याद रखिए एक बात, अगर मिसाल है इसके मटके सोने चांदी निकले तो ज़रूरी तो नहीं था कि ये सारे इसने चोरी किए हों। उसके बाप से मिले, विरासत में है, कहीं से मिल सकते हैं, औरत है तो उसको शौहर से मिल सकते हैं, हक महर में मिल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि दीनदार गरीब ही हो, ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। किसी दीनदार को थोड़ा खाते पीते अच्छी गाड़ी में बैठे देखकर लोग कहते हैं, अच्छा भाई ये हमारे ही पैसे होंगे। नहीं, ये भी गलत है, ये एक ऑप्शनल केस है। तो हमेशा अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह मेरे अंदर अगर सच्चाई है तो कभी लोगों को मुझसे मुतनफ़िर ना करना, और इसी तरह की दूसरी बातें। और इसने देखिए इसमें एक और अमल की बात है कि जो इल्ज़ाम लगाया फिर उसकी दलील दी कि आओ मैं तुम्हें उसका ख़जाना दिखाता हूँ, और लोग एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे। फिर इसके बाद आप देखिए आगे क्या हुआ। चंद दिन गुजरने के बाद लोगों ने एक दूसरे शख्स को अपना मजहबी रहनुमा मुंतखब कर लिया। मैंने इसकी खिदमत शुरू कर दी और इससे तालीम हासिल करने लगा। मैंने देखा ये शख्स तो बहुत बड़ा जाहिद, आखरत का मुतमन्नी और दिन रात इबादत में मसरूफ़ रहने वाला है। इसके ये औसाफ़ देखकर मुझे इससे बे इंतहा अकीदत और मोहब्बत हो गई। मैं इसकी खिदमत में बहुत अरसे तक रहा। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो मैं बहुत अफसरदा हुआ। अब यहाँ देखिए टर्निंग पॉइंट है। पहला मजहबी रहनुमा क्या निकला, मरने के बाद खुद बदनाम हुआ। इनकी अक्लमंदी देखिए कि उस मजहबी रहनुमा से तो बददिल हुए लेकिन जो उस दौर का हक था उससे बददिल नहीं हुए। ये बहुत अच्छी बात होती है। बस लोग इंसानों को देखकर भी पूरे नुक्ते को छोड़ देते हैं। मसलन किसी भी जगह गए, वहाँ किसी एक इंसान में कोई खामी देखी, पकड़ के पूरे इदारे पे नाम लगा दिया, पूरी मस्जिद को बदनाम कर दिया। तो ये नहीं करना, और इन्होंने ये नहीं किया। अब दूसरा शख्स आया, उसके साथ इनका अच्छा इंट्रैक्शन हुआ। जब वो दुनिया से जाने लगा तो कहने लगे कि हजरत अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं किससे तालीम हासिल करूँ। इसने लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से कहा, बेटा मूसल में एक शख्स रहता है जो हमारे मिशन पर कायम है, तुम इसके पास चले जाना। जब मेरा ये मजहबी रहनुमा फौत हो गया तो मैं तजहीज़ो तदफीन यानी कफन दफन से फारिग होकर सीधा मूसल रवाना हो गया और इस शख्स से मुलाकात की जिसके मुतल्लिक मुझे बताया गया था। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद अर्ज़ की, मुझे फलां पादरी ने मरने से पहले वसीयत की थी कि मैं आपकी खिदमत आलिया में हाजिर होकर मजहबी तालीम हासिल करूँ। उन्होंने आपके मुतल्लिक मुझे ये भी बताया कि आप इनके मिशन पर कायम हैं। वो मेरी बातों से मुतासिर हुआ और मुझे अपने पास रहने की बखुशी इजाज़त दे दी। मैंने इस पादरी को भी बहुत बेहतर पाया, ये भी पहले मजहबी रहनुमा की तरह जाहिद आबिद मुत्तकी और खुदा तर्स इंसान था। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद इसका आखिरी वक्त आ पहुँचा। मैंने अफसरदा होकर कपकपाते होंठों से अर्ज़ की, हजरत आप जानते हैं कि मैं किस तलाश में घर से निकला हूँ, क्यों मैंने नाजो नियम की ज़िंदगी को खैरबाद कहा है, क्यों मैंने फूलों की सेज छोड़कर खारदार वादी में कदम रखा है यानी कांटों वाली वादी में। हजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं किधर जाऊँ, कहाँ का रुख करूँ, किससे अपना रहनुमा बनाऊँ, किससे ये मजहबी तालीम हासिल करूँ। इसने मेरी मासूमाना हालत को देखकर कप कपाते होंठों और लुड़खड़ाती हुई ज़ुबान से इरशाद फरमाया, बेटा नसीबन नामी बस्ती में फला शख्स के पास चले जाओ, वो हमारे मिशन पर कायम है, इसे मेरा सलाम कहना और बताना कि मैंने तुम्हें इसके पास भेजा है। जब इसे भी लहत में उतार दिया गया तो मैं सीधा इस मजहबी रहनुमा के पास पहुंच गया जो बस्ती में रहता था। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद अपने साबिका मजहबी रहनुमा का सलाम पेश किया और पैगाम भी दिया कि उन्होंने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है, मैं मजहबी तालीम हासिल करने का मुतमन्नी हूँ यानी तमन्ना रखता हूँ और कामिल उस्ताद की तलाश में आपके पास पहुँचा हूँ। इसने मेरी बातें सुनकर बड़ी मसर्रत का इजहार फरमाया और हसूल इल्म के लिए अपने पास रहने की इजाज़त भी दे दी। ये भी पहले दोनों की तरह बड़ा जाहिद आबिद मुत्तकी और खुदा तर्स इंसान था, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसे भी अजल ने ज़्यादा मोहलत ना दी यानी इसकी भी मौत का वक्त आ गया। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो मैंने अफसरदगी के आलम में इसके सरहाने बैठ कर अर्ज़ की, हजरत आप मेरी तमन्ना को जानते हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है, अपने दर्द का हाल किसे सुनाऊं, किसे अपना रहनुमा बनाऊं, अब कौन मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगाएगा। इसने मेरी कैफियत देकर बड़े ही मुशफ़िकाना अंदाज यानी शफ़क़त वाले अंदाज में कहा, बेटा अमूरिया बस्ती में फलां शख्स के पास चले जाओ, वह हमारे मिशन पर कायम है। तजहीज़ो तदफीन से फारिग होकर मैं इसे जा मिला। अपना तारुफ कराने के बाद साबिका मजहबी रहनुमा का इसे पैगाम दिया तो इसने मुझे अपने पास रहने की इजाज़त दे दी। है हमारे अंदर इतनी तड़प इल्म की, एक से एक जगह से उठकर दूसरे में जा रहे हैं। تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے کاروبار کے مواقع بھی میسر آئے۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی، جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب معمول عرض کی، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی، ہائی لائٹ کریے گا اس حصے کو، یہ ہے وہ بندہ جو اب سیڑھی کا آخری سٹیپ بن رہا ہے ان کے حق تک پہنچنے میں۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم روئے زمین پہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو۔ کتنا بڑا تمانچہ ہے مذہبی رہنماؤں پہ اس سوچ کے رکھنے والوں کی، یعنی اس وقت تک کتنا عیسائیت میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ کوئی مذہبی رہنما بھی حق تک نہ تھا نہ پہنچنے دیتا تھا۔ ہاں لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا، پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ کیا؟ نمبر ایک، وہ ہدیہ تو کھا لے گا، یعنی تحفتاً اگر کوئی چیز دی جائے، لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یہ دوسری علامت ہے۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو میری نصیحت ہے ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصے تک اموریہ بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے، میں نے ان سے کہا اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے عوض یہ گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ ہائی لائٹ کریں، اصل میں تو انہوں نے پھر اپنا سب کچھ دینے کی نیت کر لی نا، ہم میں ہے کوئی حق کو پانے کے لیے سب کچھ دینے کو تیار؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القرا میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اللہ اکبر، کہتے نا کہ آسمان سے گرا کھجور میٹ کا۔ زندگی میں یہ حالات آتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ رولنگ سٹون کیوں بنے ہوئے ہیں۔ ادھر سے بھاگ کے ادھر کک مارتا ہے کوئی آپ ادھر کوئی ادھر، دیکھیے اس کے بعد کیا نکلتا ہے، اگر شرط یہ کہ آپ کو حق کی تلاش ہے۔ خیر، یہودی کے ہاتھ فروخت ہوئے تو اب کیا ہو گئے؟ غلام، ایک آزاد شخص غلام بنتا ہے دین کی خاطر۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے خرید لیا۔ یہ دیکھیے اب اللہ کے راستے، یہ ہے کہ واللہ خیر الماکرین، وہ مکر کرتے ہیں اللہ تدبیریں کرتا ہے۔ زندگی میں جھٹکے پڑ رہے ہیں، دیکھیے تو صحیح کیا ہو رہے ہیں، ہاتھوں ہاتھ بک رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، بے قیمت ہیں، بے قدر ہیں۔ بالکل حضرت یوسف کی کہانی یاد آ رہی ہے، کبھی کنویں میں گرائے جا رہے ہیں تو کبھی عزیز مصر کے گھر میں تو کبھی عورتوں کے ہاتھوں میں پھنسے۔ یاد رکھیے یہ نعمت ہے، اللہ آپ کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے، شرط ایک ہے کہ آپ حق کے راستے پہ کھڑے ہوں۔ خیر، اب یہ دیکھیے اللہ نے بنو قریظہ کے ذریعے ان کو مدینہ پہنچانا ہے۔ چچا زد بھائی ملنے آئے، اس نے مجھے خرید لیا، اور اس دور میں انسان ایسے ہی خریدے جاتے جیسے کوئی گاڑی خرید لے، لاؤ بھائی اپنی گاڑی مجھے دے دو، کتنے کی دو گے، یہ حالات ہوتے تھے۔ اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ یثرب کیا ہے؟ مدینہ کا پرانا نام۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے۔ میں نے سوچ لیا یہی میری آخری منزل ہے۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ جب بندہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے رائٹ، اللہ تعالیٰ یہ تھی آخری جگہ، بس مجھے اسی کی تلاش تھی، آج پتہ چلا۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا دو وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہے ان کے اس دور پہ، کیسے اللہ نے آہستہ آہستہ ان کو ادھر پہنچا دیا۔ کبھی آپ کو بھی نہیں سمجھ آتا آپ اس ملک میں کیوں ہیں، آپ یہاں کیا سردی سیک رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس شہر کی ان ٹھنڈی یخ بستہ راستوں میں آپ اس کا نام لے، پھر آپ پار، دوسرے جانے اپنے حالات۔ یاد رکھیے، یہ دعا کریں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں یہ نارتھ پول کے قریب وسا دیا نا تو ہمیں کھپا دے ادھر ہی۔ ہمارا کعبہ، ہمارا مکہ اور ہمارا پوائنٹ آف ایکشن یہی ملک ہے۔ اگر آپ ادھر سے باہر نہیں نکل سکتے تو اور شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو تو ادھر کے لیے چنا۔ और अगर आप इधर सिर्फ खा लें पी लें कमा लें तो वो तो सब जगह रिस्क मिलता है। अल्लाह ताला हमारी सोच सीधी करे, कहीं भी रहिए तो अल्लाह के लिए रहिए और कहीं से भी जाइए तो अल्लाह के लिए जाइए। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिदकिन वखरिजनी मुखरज सिदकिन वजालनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अब देखिए इनकी ज़िंदगी का वो खूबसूरत दौर शुरू होने लगा जिसके लिए अल्लाह ने इनको इतने ज़्यादा मराहल से गुजारा। थोड़े ही अरसे बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके यसरब पहुँच गए। मैं इस वक्त खजूर की चोटी पर काम में मसरूफ़ था। मेरा आका नीचे खजूर के दरख्त के पास बैठा हुआ था। इसका चचा जद भाई दौड़ता हुआ आया, सांस फूला हुआ था, घबराहट के आलम में कहने लगा, खुदा बनू किला को तबाह कर दे, वो आज कुबा में इस शख्स के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं जो मक्का से हिजरत करके आ रहा है और इसका दावा है कि मैं नबी हूँ। मैंने जब खजूर की चोटी पे इसकी बात सुनी तो मेरे बदन में कपकपी तारी होगी, ऊपर से गिरी ना पड़े होते। मुझे खतरा लाहक हुआ कहीं मैं नीचे ही ना गिर जाऊँ। मैं जल्दी से नीचे उतरा और बेखुदी में आने वाले शख्स से कहा, खुदा के लिए आप मुझे दोबारा बताइए क्या खबर है। मेरी ये हालत देखकर मेरे आका को गुस्सा आया और इसने मुझे ताबड़तोड़ मुक्के रसीद करने शुरू कर दिए और बुड़बुड़ाया कि तुझे इससे क्या, चल तू अपना काम कर। देखिए गुलाम की यही औकात होती है, अल्लाह करे हम अल्लाह की गुलामी में ऐसे ही समझने लग जाएं। जब शाम का वक्त हुआ तो मैंने खजूरों का थैला बगल में लिया और तलाश करते करते वहाँ पहुँच गया जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होते थे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, मुझे ये पता चला है कि आप एक सवाले और खुदा तर्स इंसान हैं और आपके हमराह कुछ मुसाफिर साथी भी हैं। ये मेरे पास सदक़े की खजूरें हैं, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपने वो खजूरें लीं और अपने साथियों से इरशाद फरमाया, ये खजूरें खा लो, और अपना हाथ रोक लिया। आपने इसमें से कोई खजूर ना खाई। मैंने अपने दिल में कहा, ये एक निशानी पूरी हुई। फिर मैं वापस आ गया, दूसरे दिन और खजूरें लीं और आपके पास हाजिर हो गया और अर्ज़ की, चूँकि आप सदका नहीं खाते इसलिए ये बतौर तोहफ़ा कुछ खजूरें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपने तोहफ़ा कबूल किया, ख़ुद भी खजूरें खाईं और अपने सहाबा को भी खिलाईं। मैंने दिल में सोचा, ये दूसरी निशानी पूरी हुई। फिर मैं तीसरी मरतबा रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस दफ़ा आप जन्नतुल बकी में अपने एक सहाबी की तदफीन के सिलसिले में तशरीफ़ फरमा थे। इस वक्त आपने दो चादरें जेब तन की हुई थी। मैंने सलाम अर्ज़ किया, मैं आपकी मोहर नबूवत देखने की कोशिश में था। ये बैक पे थी, दोनों कंधों के मिडल में, ज़ाहिर है कि खुद पीछे इंसान अपना वो हिस्सा नहीं देख सकता। मैं आपकी मोहर नबूवत देखने की कोशिश में था जो उमूरिया के पादरी ने मुझे बताई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो आप भांप गए कि मैं क्या चाहता हूँ। आपने अपनी चादर मुबारक कंधों से नीचे सरका दी। मैंने मोहर नबूवत देखी तो पहचान गया। मैं इसे चूमने के लिए झुका और ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया। देखिए हर बंदे को एक कंधा चाहिए होता है जिस पे सर टिका के वो रो सके, और जब वक्त का नबी और वो हस्ती जिनको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन का हम होते तो शायद हम भी यही करते। और कितनी चोटें खा के आए हुए थे, कितने धक्के खाए हुए थे, कितने अरसे बाद इनको वो मंजिल मिली। और अल्लाह के नबी को पता लग रहा है सब कुछ, अल्लाह नबूवत की ज़ुबान से बता देता है कि हो क्या रहा है। आपने जब मेरी ये हालत देखी तो शफकत से मुझे थपकी दी और अपने पास बिठा कर फरमाया, क्या बात है, क्यों रोते हो। मैंने अपनी पूरी दर्द भरी दास्तान आपको सुनाई। आपने इसे बड़ी दिलचस्पी से सुना, ये भी नोट करें, लोगों के दुख पूरे दिल दिमाग से सुना करें। ऐसे ना हो कि अगला बोले और आप फ़ोन से खेल रहे हैं और अगले को लगे कि पता नहीं ये क्या बात हो रही है। और मुझे फरमाया कि इन साथियों को भी ये दास्तान सुनाए। मैंने अपनी तमाम दास्तान सुनाई। वो सुनकर बहुत खुश हुए कि मैंने बड़ी मेहनत के बाद अपनी असली मंजिल को पा लिया है। सलाम ओ सलमान फारसी पर, जिस दिन वो हक की तलाश के लिए घर से निकले। सलाम हो हज़रत सलमान फारसी पर, जिस दिन उन्होंने हक को पहचान लिया और पुख्ता यकीन के साथ ईमान ले आए। सलाम हो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु पर, जिस दिन आप फौत हुए और जिस दिन उनको ज़िंदा उठाया जाएगा। तो ये थे हज़रत सलमान फारसी, अपने लिए अमल की बातें ले, क्या सीखा आपने इनसे। आप देखिए कि ज़िंदगी में कभी समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ ये हो क्यों रहा है, ये क्या हो रहा है, अल्लाह मुझे क्या हो गया, लेकिन एंड वेल इज़ गुड वेल। देखिए ना, एक बंदे को एक चीज मिल जाती है, दूसरे को नहीं मिलती। साथ वाली गली से कोई नहीं उठ के आता, और कहाँ उठकर कोई आ जाता है। कभी आपने सोचा ये बात? फासले, दूरियां, किलोमीटर्स, माइल्स में नहीं होते, ये हक की तलाश में होते हैं। लिख लें अपने लिए आज एक जुमला, हक की तलाश फासलों को समेट देती है। ये शौक और चाहत का सफर है जो बंदे के लिए मंजिलों को करीब कर देता है। वो कहते हैं ना कि जिनको हो हक की तलब या कुछ, तो मंजिलें उनको खुद आवाजें देती हैं। अल्लाह ने हर बंदे के लिए जन्नत सोची हुई है, हर बंदे के लिए हक सोचा हुआ है, लेकिन कुछ लोग हक को लेना नहीं चाहते। अल्लाह कोई दुश्मन थोड़ी है अपनी मखलूक का। अल्लाह ने ये जो जहन्नुम बनाई है ना, लिख लें, बड़ी एहतियात से जुमला बोलूंगी, जहन्नुम सिर्फ उन लोगों के लिए कूड़ा खाना है, ट्रैश है, जहां फेंका जाता है जिनके दिल में हक की तलब नहीं थी। वतवासो बिल हक की वतवासो बिस सबर, ये तो आगे जाकर पता चलेगा। बिल आखिर अल्लाह ने हर उस बंदे को बचा लेना है, आग से भी, जहन्नुम में से भी, पुल सरात से भी, जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर हक होगा। जिसने एक बार सिद्क के दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा ना, अल्लाह उसको आग में नहीं डालेगा इंशाल्लाह। और हक का ही दूसरा नाम अल हक है। हो अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, अल्लाह का नाम हक है। जी आप प्लीज।
ऐसी मुझे इनकी कहानी शुरू से कुछ हजरत इब्राहिम का वाक्य ऐसी
जी
तरह
बिल्कुल
से
सही कह रही हैं कि हजरत इब्राहिम भी क्या थे, वजीर के बेटे, लेकिन अल्लाह ने हक की तलाश और हक की मार्फत के पीछे घर से बेघर किया। और ये लिख लीजिए, जो हक पे चलेगा अपने जरूर नाराज होंगे उससे। आप सच बात बोलें, सबसे पहले आपके घर वाले दुश्मन होंगे, हालांकि वो आपसे दिल जान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो हक को कबूल नहीं करेंगे। तो जज़ाकअल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।